एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ज्ञान यात्रा पर निकल रहे हैं जो किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसी है। विशाल, चुनौतीपूर्ण, लेकिन हाँ, शिखर पर पहुंचने का नजारा अद्भुत होता है।
बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं विल और एरियल डुरांट की कालजयी रचना द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि 11 खंडों में फैला एक पूरा पुस्तकालय है, समझिए।
11 खंड?
हाँ, और जिसे लिखने में लेखकों ने अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल लगा दिए।
50 साल? जरा सोचिए। और ये सिर्फ राजाओं और युद्धों का मतलब लेखा जोखा नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। डुरांट्स ने कोशिश की है कि मानव सभ्यता की पूरी कहानी को समेटा जाए, उसका दर्शन, कला, विज्ञान, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, मतलब सब कुछ एक साथ।
और आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है और हम अपनी पहचान और दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब इतिहास को इतने बड़े फलक पर देखना शायद पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या कहती हैं?
सही कहा, बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इस महासागर जैसे काम में गोता लगाना है और इसके कुछ अनमोल मोती निकालने हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि डुरांट्स के मुख्य विचार क्या थे, उनका नजरिया क्या था, और सभ्यता की इस लंबी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं।
तो तैयार हैं सफर के लिए?
जरूर।
चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के रचनाकारों से, विल और एरियल डुरांट। ये सिर्फ लेखक नहीं थे बल्कि एक असाधारण बौद्धिक जोड़ी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सपने को, एक ही प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा दी।
हाँ, विल डुरांट, जिनका जन्म 1885 में हुआ, वो मूल रूप से एक शिक्षक और दार्शनिक थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी उन्होंने। उनकी शुरुआती दिलचस्पी तो दर्शन शास्त्र में थी, इतिहास में उतनी नहीं।
हाँ, और उनकी 1926 की किताब द स्टोरी ऑफ फिलोसफी वो जबरदस्त हिट हुई थी,
बहुत ज्यादा।
और शायद उसी सफलता ने उन्हें वो आत्मविश्वास और शायद आर्थिक साधन भी दिए जिससे वो अपने जीवन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पर काम शुरू कर सके।
बिल्कुल, विल इतिहास को घटनाओं की सूची की तरह नहीं देखते थे।
नहीं,
वो उसे विचारों और सभ्यताओं के विकास की कहानी के रूप में देखते थे। वो पैटर्न ढूंढ रहे थे, ये समझना चाह रहे थे कि सभ्यता पनपती और मुरझाती क्यों है।
और फिर थी एरिल डुरांट, जिनका जन्म 1898 में हुआ। कहानी बड़ी दिलचस्प है इनकी। वो पहले विल की छात्रा थी।
हाँ, छात्रा थी, फिर उनकी रिसर्च असिस्टेंट बनी, और फिर उनकी जीवन संगिनी, और कह सकते हैं कि बौद्धिक साथी भी। शुरुआत में उनका नाम किताबों पर नहीं आता था, लेकिन वॉल्यूम 7 के बाद से उन्हें सह लेखिका का पूरा श्रेय मिला। हालांकि उनका प्रभाव तो शुरू से ही बहुत गहरा था,
खासकर शायद सामाजिक इतिहास, रोजमर्रा की जिंदगी, महिलाओं की भूमिका, इन पहलुओं पर एरियल का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना?
हाँ, बहुत। उन्होंने इस विशाल ऐतिहासिक कहानी में वो मानवीय पहलू, वो मानवीय स्पर्श जोड़ा। विल का वो दार्शनिक नजरिया और एरियल की गहरी शोध दृष्टि, इन दोनों का मेल ही इस कृति को इतना खास बनाता है।
और उनकी एक और खासियत थी, मतलब गहरी अकादमिक रिसर्च को आम पाठक के लिए दिलचस्प कहानी की तरह पेश करना।
हाँ, उनका मकसद सिर्फ तथ्य बताना नहीं था बल्कि पाठक को जमाने में ले जाना, उसे महसूस कराना था। और उन्होंने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो था इंटीग्रल हिस्ट्री, यानी समग्र इतिहास का विचार।
इंटीग्रल हिस्ट्री, ये क्या है? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ मिला जुला कर देखना, एक होलिस्टिक व्यू?
हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि आप इतिहास को टुकड़ों में नहीं समझ सकते। राजनीति, कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन, अर्थव्यवस्था, समाज, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी युग को समझना है तो इन सबको एक साथ देखना होगा, और यही उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है।
तो ये थे विल और एरियल डुरांट। अब जरा इस 11 खंडों के महाग्रंथ के विशाल कैनवस पर नजर डालते हैं। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
जैसा हमने कहा, ये 11 खंडों की श्रृंखला है, मुख्य रूप से पश्चिमी सभ्यता के विकास का एक एकीकृत विवरण, लेकिन इसकी जड़ें पूर्वी सभ्यताओं में खोजते हुए। डुरांट्स का लक्ष्य था ये दिखाना कि आज की दुनिया, इसके विचार, इसकी संस्थाएं, ये सब कैसे बनी।
और उनका केंद्रीय विचार क्या है सभ्यता के बारे में? वो मूल रूप से क्या कहना चाहते हैं?
उनका मूल विचार ये है कि सभ्यता कोई परमानेंट चीज नहीं है
जी।
ये एक नाजुक, बहुत जटिल रचना है, जो कई ताकतों, अर्थव्यवस्था, सरकार, नैतिकता, धर्म, कला, विज्ञान, इनके बीच एक संतुलन से बनती है। और ये सिर्फ बड़े लोगों या बड़ी घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन, उनके विश्वासों, उनके संघर्षों और सपनों की भी कहानी है।
तो वो असल में पूछ रहे थे कि सभ्यता क्या है, ये कैसे पैदा होती है, कैसे फलती फूलती है, क्यों कमजोर पड़ जाती है और अपनी विरासत अगली पीढ़ी को कैसे सौंपती है। ये तो बहुत गहरे सवाल हैं।
हाँ, और उनका जवाब ये नहीं था कि इतिहास लगातार तरक्की कर रहा है।
जी,
वो लीनियर प्रोग्रेस में यकीन नहीं रखते थे।
नहीं,
बल्कि वे इतिहास में चक्रीय पैटर्न, मतलब साइक्लिकल पैटर्न्स देखते थे।
चक्रीय पैटर्न मतलब इतिहास खुद को दोहराता है, कुछ इस तरह।
कुछ हद तक, हाँ।
हाँ।
जैसे वो देखते थे कि कैसे धन कुछ हाथों में केंद्रित होता है और फिर किसी क्रांति या सुधार के जरिए उसका पुनर्वितरण होता है। कैसे समाज कभी ज्यादा स्वतंत्रता की ओर झुकता है तो कभी व्यवस्था और अनुशासन की ओर। कैसे नैतिकता के मापदंड कभी उदार होते हैं, कभी रूढ़िवादी। स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच का तनाव, वो तो जैसे शाश्वत है।
ये बातें तो आज भी उतनी सच लगती हैं। लेकिन क्या उनका नजरिया निराशावादी था फिर?
पूरी तरह नहीं। अंत में एक सतर्क आशावाद जरूर झरकता है। उनका मानना था कि तमाम लड़ाइयों, मूर्खताओं और मुसीबतों के बावजूद मानवता ने ज्ञान, कला और समझ की एक अनमोल विरासत इकट्ठी की है, और इसे बचाना और आगे बढ़ाना ही सभ्यता का काम है।
और ये विरासत कहाँ से शुरू होती है? ये 11 खंड हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं?
यात्रा बहुत लंबी है। ये शुरू होती है प्राचीन पूर्व से, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, जहाँ सभ्यता की नींव रखी गई। फिर ये हमें ले जाती है ग्रीस और रोम की क्लासिकल दुनिया में। इसके बाद मध्ययुग, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, तर्क का युग, प्रबोधन यानी एनलाइटमेंट, और आखिर में नेपोलियन के युग तक, मतलब करीब करीब 5000 साल का इतिहास।
वाह, ये तो वाकई एक महायात्रा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि डुरेंट्स का ये समग्र इतिहास का नजरिया इन खंडों में कैसे काम करता है। जाहिर है हम हर खंड पर विस्तार से बात नहीं कर सकते, पर कुछ उदाहरणों से उनकी सोच समझ में आएगी। पहला खंड, आवर ओरिएंटल हेरिटेज, हमारी पूर्वी विरासत, इसकी शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है कह सकते हैं।
पश्चिम की कई बुनियादी चीजें जैसे लेखन, कानून, खगोल विज्ञान, यहाँ तक कि कुछ हद तक एकेश्वरवाद के विचार, इनकी जड़ें पूर्व की प्राचीन सभ्यताओं में हैं। सुमेरिया, मिस्र, बेबीलोन, यहूदिया, भारत, चीन।
अच्छा,
हाँ, ये शुरुआत से ही एक वैश्विक नजरिए की बात करते हैं।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके बाद दूसरा खंड है द लाइफ ऑफ ग्रीस,
ग्रीस का जीवन।
यहाँ क्या खास है?
यहाँ तो पश्चिमी सोच की नींव रखी जा रही है। लोकतंत्र का प्रयोग, दर्शन शास्त्र का जन्म, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जिनके विचार आज भी पढ़े जाते हैं, नाटक, मूर्तिकला, इतिहास लेखन, ये सब ग्रीस की देन है। डुरांट्स दिखाते हैं कि कैसे इन ग्रीक विचारों ने आने वाली सदियों में पश्चिमी दुनिया को आकार दिया। वो सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि उस बौद्धिक और कलात्मक माहौल को एक तरह से जिंदा कर देते हैं।
फिर आता है सीजर और क्राइस्ट। सीजर और क्राइस्ट नाम से ही लगता है कि यहाँ दो बड़ी ताकतें टकरा रही हैं।
बिल्कुल, ये खंड दो समानांतर कहानियां बिनता है। एक तरफ रोमन साम्राज्य का उत्थान, उसकी कानून व्यवस्था, उसका विशाल प्रशासन, उसकी सैन्य ताकत जिसने भूमध्य सागर के चारों ओर एक साम्राज्य बनाया, और दूसरे तरफ ईसाई धर्म का उदय, एक छोटे से दबाए गए यहूदी संप्रदाय से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनना। डुरेंट्स दिखाते हैं कि कैसे राजनीतिक शक्ति सीजर और आध्यात्मिक आस्था क्राइस्ट के बीच टकराव हुआ, और आखिरकार कैसे ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का ही राज्य धर्म बन गया। ये सत्ता और विश्वास के जटिल रिश्ते की कहानी है।
इसके बाद आता है द एज ऑफ फेथ यानी मध्य युग। इसे तो अक्सर अंधकार युग या डार्क एजेस कहा जाता है। क्या डुरेंट्स भी ऐसा मानते हैं?
नहीं, यहीं पर उनका वो समग्र इतिहास का नजरिया काम आता है। वो इस धारणा को चुनौती देते हैं। वो दिखाते हैं कि ये अंधकार युग नहीं था, बल्कि तीन महान सभ्यताओं, बाइजेंटाइन साम्राज्य जिसने ग्रीक ज्ञान को बचाया, इस्लामी सभ्यता जिसने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन में क्रांति ला दी और प्राचीन ज्ञान को यूरोप तक पहुंचाया, और ईसाई यूरोप, इनके बीच जटिल आदान प्रदान और संघर्ष का युग था।
अच्छा,
वो चर्च की भूमिका, मठों में ज्ञान के संरक्षण, विश्वविद्यालयों के उदय और गॉथिक कैथेड्रल जैसी कला के विकास पर रोशनी डालते हैं।
ये तो एकदम अलग तस्वीर पेश करता है। फिर आते हैं द रिनेसों, पुनर्जागरण, और द रेफॉर्मेशन, धर्म सुधार। ये दोनों खंड लगभग एक ही समय को कवर करते हैं ना, मोटे तौर पर 14वीं से 16वीं सदी।
हाँ, और ये दिखाते हैं कि एक ही युग में कैसे दो, कह सकते हैं कि विपरीत धाराएं चल सकती हैं। द रेनेसांस इटली में कला, साहित्य और ज्ञान के अद्भुत पुनर्जन्म की कहानी है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, मैकियावेली जैसे नाम सामने आते हैं। मानवतावाद का उदय होता है, इंसान की क्षमता का जश्न मनाया जाता है।
और दूसरी तरफ द रेफॉर्मेशन में उत्तरी यूरोप में धार्मिक भूचाल आ जाता है। मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे सुधारक कैथोलिक चर्च की सत्ता को चुनौती देते हैं,
जिससे ईसाई धर्म बट जाता है और प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म होता है।
हाँ, और इसका असर सिर्फ धर्म पर नहीं बल्कि राजनीति पर भी पड़ता है, क्योंकि इससे राष्ट्र राज्यों को मजबूती मिलती है।
सही कहा, ये सचमुच दिखाता है कि कैसे कलात्मक शिखर और धार्मिक बिखराव एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं।
इसके बाद के खंड हमें आधुनिक युग की ओर ले जाते हैं। द एज ऑफ रीजन बिगिन्स, तर्क युग का आरंभ। द एज ऑफ लुई चौदहवें का युग। द एज ऑफ वोल्टेयर का युग। रूसो एंड रेवोल्यूशन, रूसो और क्रांति। और आखिर में द एज ऑफ नेपोलियन का युग।
हाँ, यहाँ तर्क, विज्ञान, प्रबोधन, एनलाइटनमेंट और क्रांति केंद्र में आ जाते हैं।
बेकन, गैलीलियो, डेस्कार्टेस, न्यूटन, वोल्टेयर, रूसो जैसे विचारक, और लुई XIV, पीटर द ग्रेट, नेपोलियन जैसे शासक, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक तरह से आधुनिक दुनिया की नींव रखी।
बिल्कुल, डुरांस की ये यात्रा हमें दिखाती है कि हम जहां आज खड़े हैं वहां तक कैसे पहुंचे।
तो इन 11 खंडों की यात्रा के बाद कुछ मुख्य विषय या संदेश हैं जो बार बार उभर कर आते हैं।
हाँ, कई हैं। पहला तो वही है जिस पर हमने पहले भी बात की, समग्र इतिहास। बिल्कुल, दूसरा बड़ा सबक है इतिहास की चक्रीय प्रकृति, साइक्लिकल नेचर। डुरांस का मानना था कि इतिहास सीधी रेखा में सिर्फ आगे नहीं बढ़ता बल्कि कई चीजें दोहराई जाती हैं।
जैसे क्या मतलब है इसका? मतलब दोहराई जाती है,
जैसे धन का कुछ लोगों के हाथों में जमा होना और फिर किसी न किसी तरह उसका दोबारा बंटना, चाहे वो शांति से हो या क्रांति से।
स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच का संतुलन
वो हमेशा बदलता रहता है। कभी समाज ज्यादा खुला होता है, कभी ज्यादा नियंत्रित। नैतिकता के पैमाने भी बदलते हैं। अगर हम भारत में ही देखें तो आर्थिक असमानता पर बहस या व्यक्तिगत आज़ादी बनाम सामाजिक नियमों की चर्चा, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये चक्र चलते रहते हैं।
तीसरा थीम जो मुझे बहुत मार्मिक लगा वो है सभ्यता की नाजुकता और लचीलापन, फ्रेजाइल येट रेजिलिएंट।
हाँ, विल ड्यूरेंट का वो मशहूर उद्धरण है, सभ्यता एक नदी है जिसके किनारे है।
नदी में अक्सर शासकों और सैनिकों का खून, चोरी और हिंसा बहती है, लेकिन किनारों पर अनजान लोग घर बनाते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे पालते हैं, गाते हैं, लिखते हैं।
सभ्यता वही है जो किनारों पर होता है।
क्या बात है।
ये दिखाता है कि जो सामाजिक व्यवस्था हमने बनाई है वो कितनी आसानी से टूट सकती है, युद्ध से, महामारी से, आंतरिक कलह से। लेकिन साथ ही सभ्यता में एक गजब का लचीलापन भी है। विचार, कला, ज्ञान, संस्थाएं, ये अक्सर विनाश के बाद भी किसी न किसी रूप में बच जाते हैं और नई शुरुआत का आधार बनते हैं। जैसे आज हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बचाने की बात करते हैं, ये उसी लचीलेपन को बनाए रखने की कोशिश है एक तरह से।
चौथा संदेश है मानव स्वभाव की निरंतरता, पर्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। ड्यूरेंट्स कहते हैं कि पहनावा बदल जाता है, तकनीक बदल जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन इंसान की बुनियादी इच्छाएं, डर, महत्वाकांक्षाएं जैसे प्यार, जलन, सत्ता की चाह, सहयोग की भावना, ये काफी हद तक वैसी ही रहती हैं।
और शायद इसीलिए हम हजारों साल पुराने साहित्य या इतिहास से भी जुड़ पाते हैं। महाभारत या रामायण के पात्रों की भावनाएं हमें आज भी समझ आती हैं।
हाँ, बिल्कुल,
क्योंकि वो उसी मानव स्वभाव से निकली हैं जो हम में भी है। इसी वजह से अतीत से सीखना संभव है।
और पांचवा मुख्य विषय है वो तनाव, टेंशंस, जो इतिहास को आगे बढ़ाते हैं, जैसे व्यक्ति और समूह के बीच का तनाव। क्या इतिहास महान लोग बनाते हैं या समाज की बड़ी ताकतें? डुरेंट्स क्या कहते हैं?
वो कहते हैं दोनों का योगदान होता है।
अच्छा।
हाँ, और एक और बड़ा तनाव है आस्था और तर्क के बीच का, खासकर पश्चिमी इतिहास में। धर्म और विज्ञान या दर्शन के बीच लगातार संवाद और संघर्ष चलता रहा है। ड्यूरेंट्स किसी एक का पक्ष नहीं लेते बल्कि दिखाते हैं कि कैसे इस तनाव ने ही सोच को विकसित किया है।
आज भी हम देखते हैं कि कैसे समाज में परंपरा और आधुनिकता या आस्था और वैज्ञानिक सोच के बीच बहस चलती रहती है।
बिल्कुल,
ड्यूरेंट्स का लेखन ऐसे विचारों और उद्धरणों से भरा पड़ा है जो सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ पर बात करें।
जरूर, पहला विचार जो मुझे बहुत गहरा लगता है, सिविलाइजेशन एग्जिस्ट बाय जियोलॉजिकल कंसेंट सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस।
सभ्यता भूवैज्ञानिक सहमति से मौजूद है, बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन है।
बाप रे, इसका मतलब है कि हमारी सारी तरक्की, हमारी सारी सभ्यता वो प्रकृति की कृपा पर टिकी है। एक बड़ा भूकंप, जलवायु परिवर्तन और सब कुछ बदल सकता है। ये तो हमें बहुत विनम्र बना देता है।
बिल्कुल। दूसरा विचार थोड़ा व्यंग्यात्मक है, लेकिन इतिहासकार की ईमानदारी दिखाता है। हिस्ट्री इज मोस्टली गेसिंग, द रेस्ट इज प्रेजुडिस। इतिहास ज्यादातर अनुमान है, बाकी पूर्वाग्रह है।
वाह, यानी इतिहास लिखना कोई पक्की साइंस नहीं है। हम अतीत को पूरी तरह कभी नहीं जान सकते, और जो लिखते हैं उसमें हमारे अपने झुकाव, हमारे पूर्वाग्रह शामिल होते हैं।
हाँ, ये एक तरह की बौद्धिक विनम्रता है। इसी से जुड़ा उनका एक और विचार है कि इतिहास का ज्यादातर हिस्सा तो दुख और संघर्ष का है, असली कहानी तो उन मुट्ठी भर रचनात्मक लोगों की है जिन्होंने मुश्किल हालात में भी कला, ज्ञान और सुंदरता को बचाया और बढ़ाया।
तीसरा विचार राजनीति से जुड़ा है और काफी विवादास्पद भी हो सकता है। फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर स्वॉन एंड एवरलास्टिंग एनिमीज। दुश्मन। ऐसा क्यों? हम तो सोचते हैं कि दोनों अच्छी चीजें हैं, एक साथ होनी चाहिए।
उनका तर्क ये था कि अगर आप सबको पूरी आजादी दे दें तो लोगों की क्षमता और मेहनत में अंतर होने के कारण नतीजों में भारी असमानता पैदा होगी।
ठीक है।
दूसरी तरफ अगर आप जबरदस्ती सबके लिए समान नतीजे लाने की कोशिश करेंगे तो आपको लोगों की आजादी कहीं ना कहीं छीननी पड़ेगी। इसलिए एक स्वस्थ समाज को इन दोनों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। ये एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है।
ये बात तो हाँ सोचने वाली है।
और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है आज,
सिविलाइजेशन इज नॉट इनहेरिटेड, इट हैज टू बी लर्न्ड एंड अर्न्ड बाय ईच जनरेशन एंड न्यू।
सभ्यता विरासत में नहीं मिलती, इसे हर पीढ़ी को नए सिरे से सीखना और अर्जित करना पड़ता है।
मतलब सभ्यता कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है जो अपने आप चलती रहेगी।
नहीं, हर पीढ़ी को शिक्षा के जरिए, संस्कृति के जरिए मूल्यों को सीखना और अपनाना पड़ता है। अगर हम ये करना बंद कर दें तो सभ्यता बिखर सकती है। ये शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है।
तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इस ज्ञान का हम क्या करें?
देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि यह हमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता है, एक बड़ा नजरिया। जब हम आज की समस्याओं को, जैसे आर्थिक संकट, सामाजिक तनाव या राजनीतिक झगड़े देखते हैं, तो ड्यूरेंट्स का काम हमें याद दिलाता है कि ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, इनके पैटर्न्स हैं। ये समझ हमें थोड़ी शांति दे सकती है और चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देखने में मदद करती है।
दूसरा, ये हमें उन चीज़ों की कदर करना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच, कानून का राज। ड्यूरेंट्स दिखाते हैं कि ये चीजें कितनी मुश्किल से हासिल हुई हैं, कितने लंबे संघर्ष के बाद विकसित हुई हैं। इनका इतिहास जानने से हम इन्हें हल्के में नहीं लेते।
तीसरा, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व को रेखांकित करता है। ड्यूरेंट्स बार बार दिखाते हैं कि महान सभ्यताएं हमेशा दूसरी सभ्यताओं से सीखने के लिए खुली रही हैं, चाहे वो ग्रीस पर पूर्व का असर हो, या मध्ययुगीन यूरोप पर इस्लामी दुनिया का, या पुनर्जागरण पर प्राचीन ज्ञान का। आज के ग्लोबलाइज्ड दुनिया में ये हमें याद दिलाता है कि अलग थलग रहने की बजाय एक दूसरे से सीखना कितना जरूरी है।
चौथा, यह व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें समृद्ध कर सकता है। खुद को हजारों साल की इस महान मानवीय कहानी का एक छोटा सा हिस्सा समझना, यह हमें विनम्र भी बनाता है और प्रेरित भी करता है ना?
हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि अकेले व्यक्ति भी, चाहे वो कलाकार हों, विचारक हों या समाज सुधारक, इतिहास पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं।
और आखिर में ये हमें बेहतर और सूचित नागरिक, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने में मदद करता है।
हाँ, जब हम स्वतंत्रता बनाम व्यवस्था, व्यक्ति बनाम समूह या आस्था बनाम तर्क जैसे बुनियादी तनावों को समझते हैं, तो हम आज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा संतुलित और शायद ज्यादा समझदारी भरी राय बना सकते हैं।
वाकई ये सिर्फ जानकारी का खजाना नहीं बल्कि समझ और विवेक बढ़ाने वाला काम है। अगर मुझसे पूछें कि इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, तो वो ड्यूरेंट्स का वही समग्र इतिहास वाला नजरिया है। चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि जोड़कर देखने की कला, आज की स्पेशलाइज्ड दुनिया में ये बहुत जरूरी लगता है मुझे। और हाँ, 50 साल का समर्पण वो अपने आप में प्रेरणादायक है।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो है सभ्यता की नाजुकता और इसे हर पीढ़ी द्वारा सहेजने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। वो जो कहा था ना, सिविलाइजेशन इज नॉट इनहेरिटेड वाली बात।
हाँ,
और साथ ही तमाम त्रासदियों के वर्णन के बावजूद मानवता की रचनात्मकता और जूझने की क्षमता में उनका जो गहरा विश्वास छलकता है, वो दिल में एक उम्मीद जगाता है।
और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। सभ्यता की इस विशाल नदी और उसके किनारों की कहानी जानने के बाद, हम अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने छोटे छोटे कामों से उस किनारे पर क्या बना रहे हैं?
हमारा योगदान क्या है इस निरंतर बहती धारा में?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।